अगले दिन वॉल स्ट्रीट में ब्यूफर्ड की स्थिति के बारे में कुछ बेहतर खबरें आई, कुछ पक्का नहीं पर उम्मीद जगाने वाली बातें। कहा गया कि संकट की घड़ी में वो ताकतवर मददगारों तक पहुंच सका और कामयाब भी रहा। उस शाम जब श्रीमती ब्यूफर्ट अपनी पुरानी मुस्कान और पन्ने के नए हार के साथ ओपेरा में प्रकट हुईं, तो समाज ने राहत की सांस ली। न्यूयॉर्क कारोबारी बेईमानी के प्रति कठोर था। ईमानदारी का कानून तोड़ने वाले को कीमत चुकानी ही पड़ेगी। इस अलिखित नियम का कभी उल्लंघन नहीं हुआ था। सब जानते थे कि ब्यूफर्ट दंपति भी इस सिद्धांत की बलि से नहीं बचेंगे, पर उन्हें बलि चढ़ाना पीड़ादायक ही नहीं असुविधाजनक भी था। उनके मिटने से उस छोटे दायरे में बड़ा खालीपन आता। नैतिक बर्बादी से बेपरवाह लोग भी सबसे अच्छे नृत्य कक्ष के खोने का शोक पहले से मना रहे थे। आर्चर ने वॉशिंगटन जाने का पक्का मन बना लिया था। वो मे को बताए मुकदमे की शुरुआत के साथ रवानगी मिलाना चाहता था, पर मंगलवार को श्री लेटर ब्लेयर से पता चला कि मुकदमा कई हफ्ते टल सकता है। फिर भी उसने अगली शाम निकलने की ठान ली। मैं उसके पेशेवर जीवन के बारे में कुछ नहीं जानती थी, उसने कभी दिलचस्पी भी नहीं दिखाई थी, सो टल्ले की खबर उस तक पहुंचने की संभावना कम थी, और पक्षकारों के नाम सुन भी लेती तो याद नहीं रखती। सबसे बढ़कर आर्चर ओलिंस्का से मुलाकात अब और नहीं टाल सकता था। उससे कहने को बहुत कुछ जमा हो गया था। बुधवार सुबह आर्चर दफ्तर पहुंचा तो श्री लेटर ब्लेयर ने उतरे चेहरे से उसका स्वागत किया। आखिरकार ब्यूफर्ट संकट से पार नहीं पा सका, पर बचने की अफवाह फैलाकर उसने जमाकर्ताओं को आश्वस्त रखा। कल शाम तक बैंक में मोटी रकमें आती रहीं, फिर बेचैन करने वाली अफवाहें फिर उठीं और निकासी की कतारें लग गईं। आशंका थी कि बैंक के दरवाजे आज ही बंद हो जाएंगे। ब्यूफर्ट की नीच चालबाजी पर लानतें बरस रही थीं और उसका दिवालियापन वॉल स्ट्रीट के इतिहास की सबसे शर्मनाक घटनाओं में गिना जाने वाला था। तबाही की विकरालता से श्री लेटर ब्लेयर पीले पड़े, कुछ कर पाने में असमर्थ थे। जिंदगी में बहुत देखा पर ऐसा भयानक कुछ नहीं। हम सबको चोट लगेगी, श्रीमती ब्यूफर्ट का क्या होगा, क्या हो सकता है। सबसे ज्यादा फिक्र श्रीमती मिंगट की है, इस उम्र में ऐसा धक्का क्या करेगा, कौन जाने। वे हमेशा ब्यूफर्ट पर भरोसा करती रही, उसे दोस्त माना, ऊपर से डलास खानदान का नाता। बेचारी श्रीमती ब्यूफर्ट तुम सबकी रिश्तेदार है, उसका एकमात्र रास्ता पति को छोड़ना होगा, पर ये उससे कहे कौन। उसका धर्म पति के पास रहना है, और शुक्र है उसने उसके निजी मामलों से हमेशा आंखें मूंदे रखी। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया और श्री लेटर ब्लेयर ने तीखेपन से सिर घुमाया। क्या है, तंग मत करो, एक कर्मचारी आर्चर को चिट्ठी थमाकर चला गया। पत्नी की लिखावट पहचान कर आर्चर ने लिफाफा खोला। जितनी जल्दी हो सके घर आ सकते हैं, नानी को कल रात हल्का आघात हुआ। अजीब बात है कि बैंक की ये भयानक खबर उन्हें सबसे पहले मिल गई। लवेल मामा शिकार पर गए हैं और पापा इस बदनामी के सदमे से बुखार में हैं, कमरे से नहीं निकल पा रहे। माँ को आपकी बहुत जरूरत है, जल्द से जल्द सीधे नानी के घर आ जाइए। आर्चर ने चिट्ठी श्री लेटर ब्लेयर को थमाई और कुछ मिनटों बाद ठसाठस भरी ट्राम में उत्तर की ओर जा रहा था। 14वीं स्ट्रीट पर उसने गाड़ी बदलकर 5वें एवेन्यू लाइन की ऊंची डगमगाती बस पकड़ी। कठिन सफर के बाद दोपहर ढले बस ने उसे कैथरीन नानी के घर के सामने उतारा। भूतल के बैठक खाने की खिड़की पर, जहां नानी आम तौर पर राज करती बैठी रहती थी, उनकी बेटी श्रीमती वेलैंड बैठी थी। उस जगह को भरने में जिनका अस्तित्व नाकाफी था, उन्होंने मुरझाए चेहरे से आर्चर का स्वागत किया। मुख्य द्वार पर मैं ने उसे संभाला। घर में अचानक आई बीमारी वाले घरों की खास हवा तैर रही थी। कुर्सियों पर बेतरतीब पड़े कोट और फर, मेज पर डॉक्टर का बैग और ओवरकोट, और उनके पास बेध्यानी में जमा होते खतों और कार्डों के ढेर। मैं पीली दिख रही थी पर मुस्करा रही थी। अभी अभी दूसरी बार आए डॉक्टर बेनकॉम ने ज्यादा उम्मीद भरी राय दी थी, और श्रीमती मिंगट की जीने की दृढ़ इच्छा परिवार पर भी असर दिखा रही थी। मैं आर्चर को नानी के बैठक खाने में ले गई। शयन कक्ष की ओर खुलने वाला सरकने वाला दरवाजा बंद था और उस पर पीले दमास्क के भारी पर्दे टंगे थे। वहीं श्रीमती वेलैंड ने भय से दबी आवाज में इस घटना की पूरी कथा आर्चर को सुनाई। कल रात 8 बजे ताशबाजी निपटते ही एक रहस्यमय वाकया हुआ। घंटी बजी और इतने घने घूंघट वाली महिला की नौकर पहचान न सके। बैठक खाने में भेंट मांगने लगी। जानी पहचानी आवाज सुनकर बटलर ने बैठक खाने का दरवाजा पूरा खोलते हुए घोषणा की, श्रीमती जूलियस ब्यूफर्ट, और दरवाजा फिर बंद हो गया। दोनों महिलाएं लगभग घंटा भर साथ रहीं। जब श्रीमती मिंगट की घंटी बजी, तब श्रीमती ब्यूफर्ट किसी की नजर में आए बिना जा चुकी थीं, और नानी सफेद, विशाल और भयावह अकेली अपनी बड़ी कुर्सी में बैठी थीं। उन्होंने बटलर को इशारा किया कि उन्हें कमरे में ले चलो। तब वे साफ तौर पर आहत थीं, फिर भी देह और मन पर उनका पूरा नियंत्रण था। मुलेटो नौकरानी ने उन्हें बिस्तर पर लिटाया, रोज की तरह चाय की प्याली दी, कमरे की हर चीज सहेज कर बाहर चली गई। पर रात के 3 बजे घंटी फिर बजी, और इस अनहोनी पुकार पर दौड़े आए दोनों नौकरों ने, कैथरीन नानी आमतौर पर बच्चे सी गहरी नींद सोती थी, देखा कि मालकिन तकियों के सहारे बैठी हैं, विशाल बांह के सिरे की नन्ही हथेली बेजान लटकी है और चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान जमी है। सौभाग्य से आघात हल्का था, वे बोल सकती थीं, अपनी बात समझा सकती थीं। पहली जांच के बाद जल्द ही चेहरे की मांसपेशियां भी काबू में आने लगी, पर धक्का बड़ा था और उतना ही बड़ा गुस्सा जब टूटे फूटे वाक्यों से खुला कि रेजिना आई थी, कैसी ढिठाई ये मांगने की पति का साथ दिया जाए, उन्हें छोड़ा न जाए, असल में पूरा परिवार उस भयंकर बदनामी को ढकने अपनाने को राजी हो। मैंने उससे कहा, मैनसन मिंगट के घर में इज्जत हमेशा इज्जत रही है और ईमानदारी हमेशा ईमानदारी, और जब तक मुझे इस घर से पांव आगे करके नहीं निकाला जाता, ये उसूल नहीं बदलेगा। नानी ने अधरंग से लड़खड़ाती आवाज में बेटी के कान में फुसफुसाते हुए कहा, तो वो बोली, पर मौसी, मेरा नाम रेजिना डलास है। मैंने जवाब दिया, जब वो तुझे जवाहरात से लाद रहा था, तब तेरा नाम ब्यूफर्ट था।
अब जब उसने तुझे शर्म से लाद दिया है, तब भी ब्यूफर्ट ही रहना होगा। श्रीमती वेलैंड आंसुओं और दहशत भरी हाफ के साथ ये सुना रही थी। अप्रिय सच से आंखें मिलाने की मजबूरी ने उन्हें दुख जितना ही बौखलाया था। बस तुम्हारे ससुर से ये छिपा पाऊं तो घनीमत, वे हमेशा कहते हैं, ऑगस्टा दया करके मेरे आखिरी भ्रम मत तोड़ो, पर ये भयानक खबर मैं छिपाऊं कैसे, उन्होंने हताश स्वर में कहा। फिर भी माँ, पापा ने उन्हें अपनी आंखों से तो नहीं देखा, बेटी ने सुझाया। श्रीमती वेलैंड ने आह भरी, हाँ शुक्र है वे बिस्तर में महफूज हैं, और डॉक्टर बैनकॉम ने वादा किया है कि माँ के सुधरने तक और रेजिना को कहीं भेज दिए जाने तक उन्हें बिस्तर में ही रखेंगे। आर्चर खिड़की के पास बैठा सूनी सड़क को खोई नजरों से देखता रहा। उसे बुलाया गया था तो साफ था कि सदमे में डूबी महिलाओं को मानसिक सहारा देने के लिए, न कि इसलिए कि वो कोई ठोस मदद कर सकता था। श्री लवेल मिंगट को तार भेजा जा चुका था, न्यूयॉर्क के रिश्तेदारों के पास संदेश वाहक रवाना थे। इस बीच बस यही किया जा सकता था कि ब्यूफर्ट की बदनामी और उसकी पत्नी के अनुचित कदम के नतीजों पर दबी आवाज में चर्चा हो।
दूसरे कमरे में रुक के लिख रही श्रीमती लवेल मिंगट लौटकर बातचीत में शामिल हुईं। दोनों बुजुर्ग महिलाएं बीते जमाने के ऐसे मामलों पर एकमत थीं। तब कारोबार में बदनाम हुए आदमी की पत्नी के मन में एक ही बात होती थी, पति के साथ ओझल हो जाना। नानी स्पाइसर का मामला भी था। मैं तुम्हारी पर नानी, श्रीमती वेलैंड ने झटपट जोड़ा, बेशक तुम्हारे पर नाना की दिक्कत निजी पैसों की थी, ताश में हारा धन या किसी की गलत जमानत, ठीक ठीक नहीं मालूम, क्योंकि माँ उस बारे में कभी बात नहीं करती थी, इसीलिए माँ देहात में पली। उनकी माँ को उस बदनामी के कारण जो भी थी न्यूयॉर्क छोड़ना पड़ा। वे हडसन के ऊपरी इलाके में अकेली रहीं, गर्मी हो या सर्दी, माँ के 16 बरस की होने तक नानी स्पाइसर को परिवार से मदद मांगने का ख्याल तक नहीं आया। रेजिना की तरह खानदान से लाज रखने की गुहार लगाना तो सोच से बाहर था, और निजी बदनामी उस घोटाले के आगे कुछ नहीं जो सैकड़ों बेगुनाहों को बर्बाद कर दे। हाँ, रेजिना को औरों से मुंह बचाने की गुहार लगाने से बेहतर होता कि अपना मुंह छिपा लेती। श्रीमती लवेल मिंगट ने हामी भरी, और सुना है कि शुक्रवार को ओपेरा में पहना पन्नों का हार बॉल एंड ब्लैक ने उसी दोपहर आजमाने को भेजा था, देखे वे उसे वापस पा भी सकेंगे या नहीं।
आर्चर इस निर्मम भर्त्सना गान को अविचल भाव से सुनता रहा। सज्जन के लिए धन में बेदाग ईमानदारी सर्वोच्च नियम है,
ये विश्वास उसमें इतना गहरा था कि कोई भावुकता उसे ढीला नहीं कर सकती थी। लेमुएल स्ट्रूथर्स जैसा जोखिमबाज चाहे संदिग्ध सौदों के बूते अपनी जूता पॉलिश से करोड़ों खड़े कर ले, पर पुराने वित्तीय न्यूयॉर्क में निष्कलंक ईमानदारी ही कुलीनता का धर्म थी। श्रीमती ब्यूफर्ट की नियति भी उसे बहुत नहीं पसीजती थी। बेशक वो उन क्रुद्ध रिश्तेदारों से ज्यादा उस पर तरस खाता था, पर उसकी नजर में पति पत्नी का बंधन समृद्धि में भले टूट जाए, विपत्ति में अटूट रहना चाहिए। जैसा श्री लेटर ब्लेयर ने कहा था, पति मुसीबत में हो तो पत्नी की जगह उसके पास है, पर समाज की जगह उसके पास नहीं थी। और श्रीमती ब्यूफर्ट का इसे स्वाभाविक मान लेना उसे लगभग पति की सह अपराधी बना देता था। कोई स्त्री परिवार से पति की कारोबारी बदनामी ढकने को कहे, ये कतई अस्वीकार्य था। यही एक चीज थी जो परिवार नाम की संस्था नहीं
कर सकती थी। नौकरानी ने श्रीमती लवेल मिंगट को बाहर बुलाया। वे तनी भौहों से लौटी। नानी कहती हैं, एलन उलेंस्का को तार भेजो। चिट्ठियां तो मैंने लिखी थी पर अब काफी नहीं, अभी तार भेजकर कहना है कि एलन अकेली आए। ये घोषणा चुप्पी में सुनी गई। श्रीमती वेलैंड ने हार मानकर आह भरी और मैं उठकर फर्श पर बिखरे अखबार समेटने चली गई। करना तो पड़ेगा ही, श्रीमती लवेल मिंगट ने ऐसे कहा मानो कोई विरोध कर दे तो अच्छा। तब मैं कमरे के बीच लौटकर बोली, बिल्कुल करना चाहिए, नानी जो चाहती है वो पूरा होना ही चाहिए। मौसी तार मैं लिख दूं, अभी भेजे तो एलन शायद कल सुबह की गाड़ी पकड़ ले। मैं ने एलन नाम के अक्षर ऐसे साफ साफ बोले जैसे चांदी की दो घंटियां बजाई हों, पर अभी तो भेजा नहीं जा सकता। जेस्पर और लड़का दोनों संदेश पहुंचाने बाहर गए हैं। मैं मुस्कुराकर पति की ओर मुड़ी, न्यूलैंड तो यही है, हर काम को तैयार। न्यूलैंड ये तार आप भेज आएंगे, दोपहर के खाने से पहले ठीक समय मिल जाएगा। आर्चर तैयार हूँ कहकर उठ खड़ा हुआ। मैं नानी की गुलाब काट की मेज बोनर दूजूर पर बैठ अपनी बड़ी कच्ची लिखावट में तार लिखने लगी। लिखकर सलीके से सुखाया और आर्चर को थमाया। अफसोस, आप और एलन रास्ते में चूक जाएंगे, मैंने जोड़ा। फिर माँ मौसी की ओर मुड़ी, न्यूलैंड को सुप्रीम कोर्ट के पेटेंट मुकदमे के लिए वॉशिंगटन जाना है। लवेल मामा कल रात लौट आएंगे, नानी भी संभल गई है। न्यूलैंड से दफ्तर की अहम प्रतिबद्धता छुड़वाना ठीक न होगा, है ना? मैं जरा रुकी जैसे जवाब की प्रतीक्षा में हो, और श्रीमती वेलैंड ने झट कहा, बिल्कुल नहीं बेटा, तुम्हारी नानी तो हरगिज नहीं चाहेंगी। तार लेकर आर्चर कमरे से निकल रहा था कि सास की आवाज कानों में पड़ी। शायद वे श्रीमती लवेल मिंग्ट से कह रही थी, पर आखिर वे एलन उलेंस्का को तार क्यों भिजवा रही हैं? और मी की साफ आवाज ने जवाब दिया, शायद उसे एक बार फिर याद दिलाने को कि आखिरकार उसका धर्म पति के साथ रहना है। आर्चर के पीछे मुख्य द्वार बंद हुआ और वो तेज कदमों से तार घर की ओर बढ़ गया।